दानियल की पुस्तक नंबर 9 स्वर्गदूतों का पहला संदेश।
दानियल का पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के पहले स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है। यहोयाकीम प्रतीकात्मक रूप से इस बात की पहचान कराता है कि ये पहले स्वर्गदूत के संदेश का सशक्तकरण है, न कि अंत के समय पर उसका आगमन। सभी भविष्यद्वक्ता अन्वेषणात्मक न्याय के अंतिम दिनों की पहचान करा रहे हैं, इसलिए ये अध्याय 11 सितंबर 2001 का प्रतिनिधित्व करता है, जब 144,000 के परीक्षण की प्रक्रिया आरंभ हुई। मलाकी के तीसरे अध्याय में उस प्रक्रिया को एक शुद्धकरण प्रक्रिया के रूप में दर्शाया गया है, जब एक संदेशवाहक मार्ग तैयार करता है ताकि वाचा का दूत अचानक अपने मंदिर में आ पहुंचे। जो संदेशवाहक मार्ग तैयार करता है, जो मरुभूमि में पुकारने वाली आवाज भी है, वो स्वयं भी एक परीक्षा है जो शुद्धकरण प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मलाकी अध्याय 3 में 144,000 को लेवी के पुत्रों के रूप में दर्शाया गया है। लेवी के पुत्र उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सोने के बछड़े के विद्रोह में, जो पशु की प्रतिमा का प्रतिनिधित्व करता था, संदेशवाहक मूसा के साथ खड़े रहे। पशु की प्रतिमा की परीक्षा में सफल होना शुद्धिकरण प्रक्रिया की 3 परीक्षाओं में से दूसरी परीक्षा का एक और बाइबिलीय उदाहरण है। लेवी के पुत्रों को उन पर मुहर लगने से पहले उस परीक्षा में सफल होना होगा। यज्ञकैल के 8वें और 9वें अध्यायों में वर्णित मुहरबंदी 11 सितंबर 2001 को शुरू हुई शुद्धिकरण प्रक्रिया का एक और चित्रण है। 8वें अध्याय में यरूशलेम में वे लोग जो अंततः सूर्य के आगे झुकते हैं, लादिकियाई एडवेंटवाद की 4 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 9वें अध्याय में जो लोग मुहर प्राप्त करते हैं, वे यरूशलेम के भीतर हो रही घृणित बातों के लिए आहें भर रहे हैं और रो रहे हैं। यरूशलेम परमेश्वर की कलीसिया है। 3 स्वर्गदूतों के संदेश शुद्धिकरण प्रक्रिया का भी एक चित्रण है। ये 3 संदेश 3 चरणीय परीक्षा प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये आवश्यक है कि लेवी के पुत्र दूसरी परीक्षा में शामिल होने के लिए भी पहली परीक्षा उत्तीर्ण करें। तीसरी परीक्षा एक भिन्न प्रकार की परीक्षा है, क्योंकि ये इस बात की परीक्षा का प्रतिनिधित्व करती है कि लेवी के पुत्रों ने पहली 2 परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की या नहीं। ये एक भविष्यवाणी का लिटमस परीक्षण है। पहली परीक्षा आहार संबंधी परीक्षा है, आध्यात्मिक अर्थों में, क्योंकि ये इस आधार पर उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होती है कि क्या लेवी के पुत्र पवित्र आत्मा द्वारा एलिया के माध्यम से दिए गए उस संदेश को स्वीकार करते हैं जो वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार करने वाला दूत है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की पहली आयत उस संदेश की गंभीरता पर जोर देती है। वो आयत जानबूझकर ये स्पष्ट करती है कि जो संदेश मानवीय दूत, जिसका प्रतिनिधित्व यूहन्ना के रूप में किया गया है, कलीसियाओं को भेजता है, वो उसे गब्रियल ने दिया था, जिसने उसे मसीह से प्राप्त किया और मसीह ने उसे पिता से प्राप्त किया था। एलिया का संदेश ईश्वरीय अधिकार से युक्त है और यूहन्ना या एलिया या जंगल में पुकारने वाले की आवाज के संदेश को अस्वीकार करना यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य को अस्वीकार करना है। दूसरी कसौटी एक दृश्य कसौटी है, क्योंकि जब लेवी के पुत्र उस एलिया के संदेश को खा लेते हैं जो उस स्वर्गदूत के हाथ में था, जो अपनी महिमा से पृथ्वी को प्रकाशमान करने के लिए उतरा था, तब वे उस बाइबिलीय पद्धति को स्वीकार कर लेते हैं जो उन्हें समय के चिन्हों को सही ढंग से परखने की अनुमति देती है। वो पद्धति लेवी के पुत्रों को ये पहचानने देती है कि वे समय के वही चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कलीसिया और राज्य एक साथ आ रहे हैं, जो पशु की प्रतिमा की कसौटी की पूर्ति है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि जब उन समय के चिन्हों को पवित्र सुधार रेखाओं के संदर्भ में रखा जाता है, तो वे अल्फा और ओमेगा का सार है, अर्थात आरंभ अंत को दर्शाता है। पवित्र सुधार रेखाएं ये दर्शाती हैं कि परमेश्वर की प्रजा को परमेश्वर की मुहर के लिए स्वयं को तैयार करने के कार्य में अपनी पूरी शक्ति लगाकर सहयोग करना चाहिए।
इसलिए हे मेरे प्रियो, जैसे तुम सदा आज्ञा मानते रहे हो, न केवल मेरी उपस्थिति में पर अब मेरी अनुपस्थिति में तो और भी, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते रहो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपनी भली इच्छा के अनुसार तुम्हारे भीतर इच्छा भी उत्पन्न करता है और काम भी करवाता है। बिना कुड़कुड़ाए और वाद विवाद किए सब काम करो, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट रहो, भर्तना से रहित परमेश्वर की संतान एक टेढ़ी और विकृत जाति के बीच, जिनके बीच तुम जगत में ज्योतियों के समान चमकते हो। फिलिप्पियों 2:12-15।
दानियल, हनन्या, मीशाएल और अजरिया, जो संख्या में 4 है, विश्व भर के सेवंथ डे एडवेंटिस्टों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो 11 सितंबर 2001 को प्रकाशित वाक्य 18 के स्वर्गदूत के उतरने की पहचान के रूप में मानते हैं, और वे उसके हाथ में जो छिपा हुआ मन्ना है उसे लेना और खाना चुनते हैं। खाया जाने वाला ये छिपा हुआ मन्ना, जैसा कि अभी प्रेरित पौलुस ने उद्धृत किया है, परमेश्वर छिपा हुआ मन्ना का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपनी प्रजा के भीतर कार्य करता है ताकि वे उसकी इच्छा और प्रसन्नता के अनुसार करें। पौलुस फिलाडेल्फियों के लिए संदेशवाहक का प्रतिनिधित्व करता है, और उसके संदेश को अस्वीकार करना मृत्यु था। दानियल, हनन्या, मीशाएल और अजरिया उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो छिपा हुआ मन्ना खाने का चुनाव करते हैं,
और उनमें यहूदा के पुत्रों में से दानियल, हनन्या, मीशाएल और अजरिया थे, जिन्हें खोजों के प्रधान ने नाम दिए, क्योंकि उसने दानियल का नाम बेलतशस्सर रखा और हनन्या का शद्रक और मीशाएल का मेशक और अजरिया का अबेदनगो। परंतु दानियल ने अपने मन में ठाना कि वो राजा के भोजन के भाग से और उस दाख मधु से जिसे वो पीता था अपने को अशुद्ध न करेगा, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि वो अपने को अशुद्ध न करे। दानियल 1:3-3।
दानियल ये निर्णय करता है कि वो 11 सितंबर 2001 को स्वर्ग से उतारे गए संदेश को ग्रहण करना चाहता है, और साथ ही बाबुल के आहार और पेय के रूप में प्रस्तुत संदेश को अस्वीकार करना चाहता है। अश्पिनाज ने ये चुन लिया था कि यहूदा के किन बंदियों को राजा के सामने लाया जाना चाहिए,
और राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पिनाज से कहा कि वो इसराइल के कुछ लड़कों को और राजा के वंश में से और सरदारों में से ले आए, ऐसे लड़के जिनमें कोई दोष न हो, परंतु सुंदर रूपरंग वाले और सब प्रकार की बुद्धि में निपुण, ज्ञान में प्रवीण और विद्या को समझने वाले, और जिनमें ये सामर्थ्य हो कि वे राजा के महल में उपस्थित हो सकें, और जिन्हें वे कसदियों की विद्या और भाषा सिखा सकें। दानियल 1:5-5।
यदि हम प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय और पहले पद में पहचाने गए आज्ञाक्रम का अनुसरण करें, तो नबूकदनेस्सर ने अश्पेनाज को उन बच्चों को चुनने का निर्देश दिया था जो उस भविष्यवाणी को पूरा करते थे जिसे यशाया ने हिजकिया के सामने घोषित किया था। अश्पेनाज ने संदेश लिया और उसे खोजों के प्रधान मेलजार को दे दिया। नबूकदनेस्सर स्वर्गीय पिता का प्रतिनिधित्व करता है, अश्पेनाज मसीह का और मेलजार गब्रियल का। अश्पेनाज जानता था किन बच्चों का पहुँचायन करना है, और वो जानता था कि दानियल सही आहार संबंधी निर्णय करेगा राजा के सामने उसे लाने से पहले।
अब परमेश्वर ने दानियल को खोजों के सरदार की दृष्टि में अनुग्रह और स्नेह दिलाया था, और खोजों के सरदार ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ जिसने तुम्हारे खाने और पीने की व्यवस्था ठहराई है, क्योंकि वो क्यों देखे कि तुम्हारा चेहरा तुम्हारे समान अन्य युवकों की अपेक्षा अधिक मुरझाया हुआ है, तब तुम्हारे कारण मेरा सिर राजा के आगे संकट में पड़ जाएगा। दानियल 1:9-10।
यहाँ मेलजार 3 स्वर्गदूतों के संदेशों के पहले चरण की पहचान करता है। पहला चरण परमेश्वर का भय मानना है, जैसा कि मिलजार के नबूकदनेस्सर के भाई से दर्शाया गया है। इब्रानी वर्णमाला के प्रथम, 13वें और अंतिम अक्षर को मिलाकर बना इब्रानी शब्द सत्य के बारे में इन लेखों में पूर्व में ये दिखाया गया है कि वो 3 स्वर्गदूतों की 3 चरणीय परीक्षण प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार कई साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित किया गया कि पहले स्वर्गदूत के संदेश में वे 3 परीक्षाएं सम्मिलित थीं, जिन्हें 3 स्वर्गदूतों के संदेश दर्शाते हैं। पहले स्वर्गदूत के संदेश को अनंत सुसमाचार के रूप में पहचाना गया है, जो इसे आदम के दिनों से लेकर मसीह के दूसरे आगमन तक उसी सुसमाचार के रूप में परिभाषित करता है।
और मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के मध्य में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों और हर जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए अनंत सुसमाचार था। वो ऊंचे स्वर से कहता था, परमेश्वर का भय मानो और उसे महिमा दो, क्योंकि उसके न्याय की घड़ी आ गई है, और उसकी उपासना करो जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। प्रकाशित वाक्य 14:6-7।
पहले स्वर्गदूत के संदेश का पहला चरण परमेश्वर का भय मानना है, दूसरा चरण उसे महिमा देना है, और तीसरा उसके न्याय की घड़ी का आगमन है। अन्य दो स्वर्गदूतों के संदेशों के संदर्भ में पहले स्वर्गदूत का संदेश है परमेश्वर का भय मानो, फिर दूसरे स्वर्गदूत का संदेश बाबुल के पतन की घोषणा करता है, और चाहे पहले स्वर्गदूत के मिलराइट आंदोलन में हो या तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन में, बाबुल से निकलने का आह्वान वही अवधि है जिसमें पवित्र आत्मा के उंडेला जाने का प्रकटीकरण होता है। उसी अवधि में चाहे उसे आधी रात की पुकार, बुलंद पुकार या अंतिम वर्षा के रूप में प्रस्तुत किया जाए, संदेश सुनाने वाले परमेश्वर को महिमा देते हैं। दूसरे स्वर्गदूत के संदेश में ही परमेश्वर को महिमा दी जाती है, और वही अवधि एक ऐसे समय बिंदु तक ले जाती है जहां मिलराइट इतिहास में जांच न्याय आरंभ हुआ, या रविवार कानून के संकट में होने वाला बाबुल की वेश्या का न्याय। मेलजार का भय प्रथम स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है, और उसी से 10 दिनों की आहार परीक्षा आरंभ होती है, और संख्या 10 स्वयं भी परीक्षा का प्रतीक है। राजा से डरने का मेलजार का ये कहना उसी के समान था जैसे दानियल राजा से बढ़कर परमेश्वर से डरता था, और उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो बाबेल के आहार से अपने को अपवित्र नहीं करेगा। दानियल और उन 3 वीरों की परीक्षा की अवधि 3 वर्ष की थी, जो 3 स्वर्गदूतों के संदेशों के 3 वर्ष जो चरणों का प्रतिनिधित्व करती है।
और राजा ने उनके लिए प्रतिदिन राजा के भोजन का और उस दाख मधु का भाग ठहराया जो वो पीता था, ताकि उन्हें 3 वर्ष तक पोषित किया जाए और उसके अंत में वे राजा के सामने उपस्थित हो सकें। दानियल 1:1।
दानियल का पहला अध्याय पहले स्वर्गदूत के संदेश के सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करता है, और वहीं आहार संबंधी परीक्षा की शुरुआत को चिह्नित करता है, जिसे मिलराइट इतिहास में छोटी पुस्तक को खाने से दर्शाया गया था। दानियल और उन 3 धर्मनिष्ठों के लिए परीक्षात्मक अवधि उन 3 वर्षों के प्रारंभिक 10 दिनों में संपन्न हुई। 10 परीक्षा की प्रक्रिया का एक प्रतीक है, जैसा कि प्राचीन इसराइल में तब प्रदर्शित होता है जब उन्होंने यहोशू और कालेब के संदेश के रूप में प्रस्तुत 10वीं परीक्षा को अस्वीकार कर दिया। ये स्मिरना की कलीसिया के सताव के समय में भी दर्शाया गया है।
जो बातें तुम सहने वाले हो उनसे मत डरो। देखो, शैतान तुम में से कुछ को कैद खाने में डालने वाला है ताकि तुम्हारी परीक्षा हो, और तुम 10 दिनों तक क्लेश भोगोगे। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10।
स्मिरना की कलीसिया को ये परामर्श दिया गया कि वे परीक्षा से न डरें, क्योंकि यदि वे परमेश्वर का भय मानेंगे तो वो उनके परमेश्वर भय का प्रतिफल स्वरूप उन्हें जीवन का मुकुट देगा। उस परमेश्वर भय का प्रतीक दानियल की स्वर्गीय मन्ना खाने की इच्छा है।
तब दानियल ने मेलजार से कहा, जिसे खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्या, मीशाएल और अजरिया के ऊपर नियुक्त किया था, मैं तुझसे विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन पर रख ले और हमें खाने को सब्जियां और पीने को पानी दिया जाए। फिर हमारे मुखमंडल को तेरे सामने और उन युवकों के मुखमंडल को जो राजा के भोजन का भाग खाते हैं देख लिया जाए, और जैसा तू देखे अपने दासों के साथ वैसा ही कर। तब उसने इस बात में उनकी बात मान ली और उन्हें 10 दिन पर खा। दानियल 1:10-14।
पहली परीक्षा परमेश्वर का भय मानना थी, जैसा कि मेलजर और दानियल द्वारा दर्शाया गया। जब दानियल ने अपने मन में ये ठाना कि वो बाबिलोनी भोजन और पेय से अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। पहले स्वर्गदूत के संदेश का दूसरा तत्व परमेश्वर को महिमा देना है, जो आहार के प्रभावों के दृश्य प्रकटीकरण को दर्शाता है। 10 दिनों के अंत में दानियल और 3 योग्य जनों ने अपने शारीरिक स्वरूप द्वारा परमेश्वर को महिमा दी।
और 10 दिनों के अंत में उनके चेहरे उन सब युवकों से अधिक सुंदर और देह में अधिक हृष्टपुष्ट दिखाई दिए जो राजा के भोजन का हिस्सा खाते थे। तब मेलजार ने उनके भोजन का हिस्सा और वो दाख रस जिसे उन्हें पीना था हटा दिया और उन्हें दालें दी। जहां तक इन चारों युवकों का संबंध है, परमेश्वर ने उन्हें हर प्रकार की शिक्षा और बुद्धि में ज्ञान और कौशल दिया, और दानियेल को हर प्रकार के दर्शनों और स्वप्नों की समझ थी। दानियेल 1:15-17।
चारों युवकों ने आहार के संबंध में पहली परीक्षा उत्तीर्ण की। यही वो क्षेत्र था जिसमें आदम और हव्वा असफल हुए थे, और यही वो पहली परीक्षा थी जिसका सामना मसीह ने अपने बपतिस्मा के तुरंत बाद किया। मसीह का बपतिस्मा उसकी भविष्यवाणी की रेखा के प्रथम संदेश को सामर्थ्य देने वाला था। इसने जंगल में पुकारने वाली आवाज द्वारा घोषित संदेश को सामर्थ्य दी और उसकी पुष्टि की। फिर जैसे दानियेल और 3 वीरों के साथ हुआ, वैसे ही मसीह को आहार के विषय में 40 दिनों तक परखा गया, जैसे दानियेल को 10 दिनों के लिए परखा गया था। दानियेल और मसीह उस परीक्षा का प्रतीक थे जो स्वर्गदूत के हाथ में छिपे हुए मन्ना की थी, जो 11 सितंबर 2001 को उतरा था। इसके बाद मसीह और दानियेल दोनों के लिए 2 और परीक्षाएं आई। दूसरी परीक्षा वो थी जहां दानियेल और 3 वीरों ने अपने चेहरे की आभा द्वारा परमेश्वर की महिमा की। मसीह के लिए आहार संबंधी परीक्षा के बाद जो परीक्षा आई, वो भी महिमा का ही प्रतीक थी।
और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को आज्ञा दे कि ये रोटी बन जाए। और यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। और शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और एक क्षण में उसे संसार के सब राज्य दिखाए। और शैतान ने उससे कहा, ये सब अधिकार और इनकी महिमा मैं तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहूं इसे देता हूं। इसलिए यदि तू मेरी आराधना करेगा तो ये सब तेरा हो जाएगा। और यीशु ने उत्तर देकर उससे कहा, हे शैतान, मेरे पीछे हट, क्योंकि लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। मत्ती 4:3-8।
जब मसीह ने आहार की परीक्षा पास कर ली, तब शैतान ने संसार के सभी राज्यों की महिमा की पेशकश की, परंतु मसीह ने इसके बजाय सब राजाओं के राजा की महिमा करना चुना। आदम और हव्वा पहली परीक्षा में असफल हुए और तुरंत उन्होंने अपने चेहरे अंजीर के पत्तों से ढकने की कोशिश की, क्योंकि वे अब परमेश्वर की महिमा प्रदर्शित नहीं कर रहे थे जो पहले पहने हुए प्रकाश के वस्त्र से प्रकट होती थी। जब दानियेल और 3 योग्य जनों ने आहार संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण की, तब उन्हें समस्त विद्या और बुद्धि में ज्ञान और कौशल और दानियेल को सब प्रकार के दर्शन और स्वप्नों की समझ दी गई। उन्होंने दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण की जो मेलजार द्वारा ली गई एक दृश्य परीक्षा थी। मिलर राइट इतिहास में दूसरे स्वर्गदूत के संदेश ने उन लोगों के बीच भेद रेखांकित किया जिन्होंने मरुस्थल में पुकारने वाली आवाज के संदेश को स्वीकार किया और जिन्होंने उसे अस्वीकार किया। इस आवाज का प्रतिनिधित्व विलियम मिलर ने किया था। भविष्यवाणी की दृष्टि से तब मिलराइट आंदोलन प्रोटेस्टेंटवाद का प्रत्यक्ष और एकमात्र सच्चा सींग बन गया, और जिन्होंने उस संदेश और आंदोलन को अस्वीकार किया वे रोम की पुत्रियां कहलाए। उन्होंने छोटी पुस्तक के विपरीत बाबेल का आहार खाना और बाबेल की मदिरा पीना चुन लिया था। 3 वर्ष के अंत में दानियेल और वे योग्य जन नबूकदनेस्सर द्वारा परखे जाने के लिए प्रस्तुत किए गए।
अब उन दिनों के अंत में, जिनके बाद राजा ने कहा था कि उन्हें भीतर लाया जाए, खोजों के प्रधान ने उन्हें नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया और राजा ने उनसे बातचीत की, और उन सब में दानियेल, हनन्या, मीशाएल और अजरिया के समान कोई न पाया गया। इसलिए वे राजा के सामने उपस्थित रहने लगे और ज्ञान और समझ की सब बातों में जिनके विषय में राजा ने उनसे पूछा, उसने उन्हें अपने सारे राज्य के सब जादूगरों और ज्योतिषियों से 10 गुना उत्तम पाया। और दानियेल राजा कुरूश के पहले वर्ष तक बना रहा। दानियेल 1:18-21।
दानियल और वे तीन श्रेष्ठ जन 10 दिनों की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और फिर अपनी अंतिम परीक्षा टेस्ट उत्तीर्ण करने पर वे बाकी सभी से 10 गुना अधिक बुद्धिमान पाए गए। दानियल का पहला अध्याय दानियल और प्रकाशित वाक्यतों की पुस्तकों से मिलकर बने इस ग्रंथ में पहले स्वर्गदूत के संदेश का पहला संदर्भ है। इसमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के पहले स्वर्गदूत वाली ठीक वही विशेषताएं हैं। ये उस सत्य की पुष्टि करता है जिसका पहली बार प्रकाशित वाक्य की पहली आयत में हुआ है, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने एक संदेश अश्पेनाज को दिया, जिसने आगे वो संदेश मेलजार को दिया, जिसने फिर दानियल से संपर्क किया। पिता ने एक संदेश मसीह को दिया, जिसने आगे वो संदेश गब्रियल को दिया, जिसने फिर यूहन्ना से संपर्क किया।
जो संदेश प्रेषित किया गया है, जिसकी मुहर अब खोली जा रही है, वो ये बताता है कि पिता अपनी कलीसिया से कैसे संचार करते हैं। अपनी कलीसिया के लिए पिता सबसे पहले जिस बात की पहचान कराते हैं वो 3 स्वर्गदूतों की 3 चरणीय परीक्षण प्रक्रिया है। परमेश्वर के भविष्यदर्शी वचन ने इस प्रक्रिया को बहुत सावधानी से भविष्यवाणी की कई रेखाओं तथा मिलराइटों के इतिहास के माध्यम से विस्तार से बताया है। ये सत्य उस छिपे हुए मन्ना का आवश्यक तत्व है जो स्वर्गदूत के हाथ में था जब वो 11 सितंबर 2001 को उतरा।
यदि आपने पहली परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो दूसरी परीक्षा में भाग लेना और इसलिए उसे उत्तीर्ण करना असंभव है। ये सत्य मसीह और मिलराइट्स के इतिहास में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। दानियल का दूसरा अध्याय दूसरी परीक्षा है जिसके द्वारा, जैसा कि सिस्टर व्हाइट कहती हैं, हमारी अनंत नियति का निर्णय किया जाएगा। वो आगे कहती हैं कि ये वो परीक्षा है जिसे हमें मुहरबंद किए जाने से पहले पास करना है। वो परीक्षा अब लगभग समाप्त हो चुकी है।
दानियल का दूसरा अध्याय पशु की प्रतिमा की परीक्षा के बारे में है और ये उचित ही है कि वो अध्याय एक महान प्रतिमा पर केंद्रित है, और ये भी कि दानियल ने आहार संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उसे 10 गुनी अधिक समझ और बुद्धि का आशीर्वाद मिला था, इसी कारण वो उस परीक्षा को पहचान सका। एलन व्हाइट की रचनाओं में परीक्षा के बारे में दी गई चेतावनी की तरह दानियल के दूसरे अध्याय की प्रतिमा परीक्षा जीवन या मृत्यु के परिणामों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक परीक्षा है।
इस कारण राजा क्रोधित और अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने बाबेल के सब ज्ञानी पुरुषों का नाश करने की आज्ञा दी, और ये फरमान निकला कि ज्ञानी पुरुषों को मार डाला जाए, और वे दानियल और उसके साथियों को भी मार डालने के लिए ढूंढे लगे। दानियल 2:12-13।
दानियल के पहले अध्याय में भविष्यवाणी से जुड़े कुछ और मुद्दे हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, और हम अगले लेख में उन मुद्दों पर चर्चा जारी रखेंगे।
मैंने एक ऐसे समूह को देखा जो सतर्क और दृढ़ खड़ा था, और उन लोगों को तनिक भी समर्थन नहीं दे रहा था जो समुदाय के स्थापित विश्वास को डगमगाने का प्रयत्न करते। परमेश्वर ने उन पर प्रसन्नता से दृष्टि की। मुझे 3 पायदान दिखाए गए, पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्गदूतों के संदेश। मेरे साथ रहने वाले स्वर्गदूत ने कहा, हाय उस पर जो इन संदेशों के किसी पत्थर को भी हिलाए या किसी कील को भी छेड़े। इन संदेशों की सच्ची समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्माओं का भाग्य इस बात पर टिका है कि इन्हें किस प्रकार ग्रहण किया जाता है। मुझे फिर से इन संदेशों के माध्यम से ले जाया गया और मैंने देखा कि परमेश्वर की प्रजा ने अपना अनुभव कितनी भारी कीमत चुकाकर प्राप्त किया था। वो बहुत दुख और कठोर संघर्ष के द्वारा प्राप्त हुआ था। परमेश्वर ने उन्हें कदम दर कदम अग्रसर किया, यहाँ तक कि उसने उन्हें एक ठोस अचल मंच पर खड़ा कर दिया। मैंने देखा कि कुछ व्यक्ति उस मंच के पास आए और नींव की जांच की। कुछ ने आनंद के साथ तुरंत उस पर कदम रखा, दूसरों ने नींव में दोष ढूंढना शुरू किया। वे चाहते थे कि सुधार किए जाएं, तब मंच अधिक पूर्ण होगा और लोग बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। कुछ लोग उसे परखने के लिए मंच से उतर गए और घोषित किया कि इसकी नींव गलत ढंग से डाली गई है, परंतु मैंने देखा कि लगभग सब उस मंच पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहे, और जिन्होंने उतर गए थे उन्हें अपनी शिकायतें बंद करने के लिए समझाया, क्योंकि परमेश्वर प्रधान शिल्पी था और वे उसी के विरुद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन किया जिन्होंने उन्हें उस दृढ़ मंच तक पहुंचा दिया था, और मिलकर अपनी आंखें स्वर की ओर उठाईं और ऊंचे स्वर से परमेश्वर की महिमा की। इसका प्रभाव उनमें से कुछ पर पड़ा जिन्होंने शिकायत की थी और मंच छोड़ दिया था, और वे नम्र मुख भाव के साथ फिर से उस पर चढ़ गए। मेरा ध्यान फिर से मसीह के प्रथम आगमन की घोषणा की ओर दिलाया गया। यूहन्ना को एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया था। जिन लोगों ने यूहन्ना की गवाही को अस्वीकार किया, वे यीशु की शिक्षाओं से लाभान्वित नहीं हुए। उसके आने की पूर्व घोषणा करने वाले संदेश का उनका विरोध उन्हें ऐसी स्थिति में ले आया कि वो मसीहा है। इसके सबसे प्रबल प्रमाण को भी वे सहजता से स्वीकार न कर सके। शैतान ने यूहन्ना के संदेश को अस्वीकार करने वालों को और आगे बढ़ाया कि वे मसीह को भी अस्वीकार करें और उसे क्रूस पर चढ़ाएं। ऐसा करते हुए वे अपने आप को ऐसी जगह ले आए कि वे पिंतकुस्त के दिन की उस आशीष को प्राप्त न कर सके जो उन्हें स्वर्गीय पवित्र स्थान में प्रवेश का मार्ग सिखाती। मंदिर के पर्दे का जब फट जाना यह दर्शाता था कि यहूदियों के बलिदान और विधि विधान अब और स्वीकार नहीं किए जाएंगे। महान बलिदान चढ़ाया जा चुका था और स्वीकार भी कर लिया गया था, और पिंतकुस्त के दिन जो पवित्र आत्मा उतरा उसने चेलों के मनों को पृथ्वी के पवित्र स्थान पार से स्वर्गीय पवित्र स्थान की ओर ले गया, जहां यीशु अपने ही लहू के द्वारा प्रवेश कर चुका था, ताकि अपने चेलों पर अपने प्रायश्चित के लाभ उंडेल दे। परंतु यहूदी पूर्णतः अंधकार में छोड़ दिए गए। उद्धार की योजना के विषय में जो प्रकाश उन्हें मिल सकता था वह सब उन्होंने खो दिया, और वे अपने निष्फल बलिदानों और भेंटों पर ही भरोसा करते रहे। स्वर्गीय पवित्र स्थान ने पृथ्वी के पवित्र स्थान का स्थान ले लिया था, फिर भी उन्हें इस परिवर्तन का कोई ज्ञान न था। इसलिए पवित्र स्थान में मसीह की मध्यस्थता से वे लाभान्वित न हो सके। बहुत से लोग मसीह को अस्वीकार करने और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने में यहूदियों के आचरण को भय से साथ देखते हैं, और जब वे उनके शर्मनाक दुर्व्यवहार का इतिहास पढ़ते हैं तो वे सोचते हैं कि वे उनसे प्रेम करते हैं और पतरस की तरह उन्हें इनकार नहीं करते या यहूदियों की तरह उन्हें क्रूस पर नहीं चढ़ाते। परंतु जो परमेश्वर सबके हृदयों को पढ़ता है उसने यीशु के प्रति उस प्रेम की परिदर्शा ली जिसका वे महसूस करने का दावा करते थे। समस्त स्वर्ग ने पहले स्वर्गदूत के संदेश के स्वागत को अत्यंत गहरी रुचि से देखा, परंतु बहुत से लोग जो यीशु से प्रेम का दावा करते थे और क्रूस की कहानी पढ़ते समय आंसू बहाते थे, उन्होंने उसके आने के शुभ समाचार का उपहास किया। संदेश को आनंद से ग्रहण करने के बजाय उन्होंने उसे भ्रम घोषित किया। उन्होंने उन लोगों से घृणा की जो उसके प्रकट होने से प्रेम रखते थे, और उन्हें कलीसियाओं से बाहर कर दिया। जिन्होंने पहले संदेश को अस्वीकार किया वे दूसरे से लाभान्वित न हो सके, नहीं वे मध्य रात्रि की पुकार से लाभान्वित हुए जो उन्हें विश्वास के द्वारा यीशु के साथ स्वर्गीय पवित्र स्थान के परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए तैयार करने हेतु थी। और पहले के दो संदेशों को अस्वीकार कर उन्होंने अपनी समझ को इतना अंधकारमय कर लिया है कि वे तीसरे स्वर्गदूत के संदेश में जो परम पवित्र स्थान में प्रवेश का मार्ग दिखाता है कोई प्रकाश नहीं देख पाते। मैंने देखा कि जैसे यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, वैसे ही नाम मात्र की कलीसियाओं ने इन संदेशों को क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसलिए उन्हें परम पवित्र में जाने के मार्ग का ज्ञान नहीं है, और वे वहां यीशु की मध्यस्थता से लाभान्वित नहीं हो सकते। यहूदियों की तरह जो अपने निष्फल बलिदान चढ़ाते थे, वे उस कक्ष की ओर अपनी निष्फल प्रार्थनाएं भेजते हैं जिसे यीशु छोड़ चुके हैं, और शैतान इस छल से प्रसन्न होकर धार्मिक रूप धारण करता है और इन कहलाने वाले मसीहियों के मनों को अपनी ओर मोड़ देता है। अपनी शक्ति, अपने चिन्हों और झूठे अद्भुत कार्यों के द्वारा काम करते हुए उन्हें अपने जाल में बांध देता है। अर्ली राइटिंग्स 258-261।